मैं नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ नन्हा सा फूल हूँ चरणों की धूल हूँ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार गुरु जी मेरी पूजा करो करो प्रभु जी मेरी पूजा करो धन को धन मिल जाए मानो तुम्हारा उपकार गुरु जी मेरी पूजा करो
लोग पैरों से कुचल करके उस फूल को चले जाते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती है जो डाली से टूटा हुआ फूल हो। लेकिन एक फूल वो है जो गुरु और प्रभु के जब चरणों में चढ़ जाता है तो उस फूल को उठा करके हम अपने मस्तक से लगाते हैं, उस फूल को पैरों से कुचलते नहीं हैं। उस फूल की कीमत हमारे जीवन में बढ़ जाती है क्योंकि वो फूल हमारे प्रभु के और हमारे गुरु के चरणों का फूल है। यही भाव है इस हम अपने गुरुदेव के चरणों के फूल बने, फूल जैसा हमारा जीवन हो।
नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं आया हूँ मैं तो तेरे द्वार गुरु जी मेरी पूजा करो।
जीना सीखो ऐसा वरदान दो, सूरज शीशान पाओ चंदा सामान पाओ, सूरज शीशान पाओ चंदा सामान पाओ, इतना सा दे दो उपहार गुरु जी मेरी, पूजा करो स्वीकार गुरु जी मेरी, पूजा करो स्वीकार, नन्हा सा फूल मैं चरणों की धूल मैं, नन्हा सा फूल मैं चरणों की धूल मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार गुरु जी मेरी, पूजा करो
गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, सोन का दृश्य आपका जो प्रश्न है ये सर्वोत्तम प्रश्न है। मानव का कल्याणकारी यदि कोई मार्ग है तो केवल परमात्मा की निष्काम भक्ति, कामना रहित जब ईश्वर की हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, क्योंकि धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का फल अर्थ नहीं है और अर्थ भी धर्म के लिए होना चाहिए, न कि केवल भोग विलास के लिए। इसी प्रकार से मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो भी तत्व जिज्ञासा है और पूर्ण तत्व ही कृष्ण है, वो परमात्मा है, जिसे ज्ञानी कहता है ब्रह्म, योगी कहता है परमात्मा और भक्त कहता है भगवान। लेकिन तीन नाम है, ज्ञानी ने उसे कहा ब्रह्म और योगियों ने कहा परमात्मा, लेकिन भक्तों से पूछो तो भक्त कहते हैं कि हमारा तो भगवान है, लेकिन तत्वतः वो एक ही है, दो नहीं है। भगवान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही भगवान है, भगवान ही परमात्मा है, परमात्मा ही भगवान है। ठीक ठीक धर्म का अनुष्ठान करने पर यदि भगवत कथा से हमारी प्रीति नहीं हुई तो वो फिर धर्म धर्म नहीं है, वो तो केवल श्रम है। सोन का दृश्यो तत्तत्तानि तेषां भावम इति तत्त्वम्, जीव तत्व जग तत्व और आत्म तत्व, वो आत्म तत्व ही कृष्ण तत्व है। और श्रीमद् भागवत में मैं आपको कृष्ण तत्व का ही वर्णन करूंगा जो सनातन सत्य है कृष्ण। लेकिन प्रश्न किया सोनका दृश्यों ने सूत जी महाराज के श्री चरणों में कि भगवान आप भागवत की कथा हमें सुनाएंगे, लेकिन एक बात बताइए कि भागवत को कस्मिन युगे प्रवर्त्यम स्थाने वा केन हेतुना, ये कहां पर बैठकर के भागवत को लिखा और किस कारण से किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ, थोड़ा आप ये भी बता दें भागवत की उत्पत्ति के बारे में कि भागवत को क्यों लिखा, आप लोग थोड़ा इस बात को जरूर समझें। ये बड़ा महत्वपूर्ण भागवत का प्रसंग है। व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं रहता। जब तक मैं का विलय न हो तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं संभव नहीं है। इस मैं का विलय करना ही होता है। श्री सूत जी महाराज सोनका दृश्यों से बोले कि सोनका दृश्यों, वहां पर एक संत की आवश्यकता होती है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं कि जिस समय वेदव्यास जी ने वेदों को सरल करने के लिए जन जन तक वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, वेद किसी मानव के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, वेद भगवान हैं, वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, वेद अपौरुष है। तो वेदों के चार विभाग किए, ऋग, यजु, साम और अथर्व, और फिर उपनिषद लिखा, फिर महाभारत को लिखा, महाभारत में गीता को भी लिखा। इतना लिखने के बाद वेदव्यास को आत्मसंतोष नहीं हुआ, इतना लिख दिया। एक दिन श्री नारद जी महाराज वेदव्यास के आश्रम पर पहुंचे। अब वेदव्यास बड़े उदास बैठे हैं, तो नारद जी ने वेदव्यास जी को पूछा कि वेदव्यास आप उदास क्यों हैं? नारद, आप तो संत हैं, आप ही बता दीजिए ना, आप तो सर्वत्र विचरण करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि वेदव्यास, ठीक है, मैं आपकी उदासी का कारण जानता हूं। बोले महाराज बताइए। तो कहा कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। श्री नारद जी ने कहा कि वेदव्यास, आपने वेदों से लेकर के महाभारत तक बहुत लिखा, इतना लिखा कि अब कुछ लिखना शेष ही बाकी नहीं था, लेकिन फिर भी अभी कुछ लिखना बाकी रहा है, क्योंकि आपने अब तक जो लिखा वो दूसरों के लिए लिखा, लेकिन अपने लिए आपने कुछ लिखा? जैसा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को जब लिखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास बैठे, तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में यह बात लिखी है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं राम का जो चरित्र लिख रहा हूं स्वांतः सुखाय, अपने लिए। यही बात वेदव्यास भगवान ने कहा है कि तथापि नात्मा परतुष्यते में। तो नारद जी यही बात समझा रहे हैं कि अब तक आपने दूसरे के लिए लिखा कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, लेकिन अब आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल भगवान के चरित्रों का, लीलाओं का गान करिए। जब आप भगवान की लीलाओं का गान करेंगे तब आपके आत्मा को संतोष होगा। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुना देता हूं कि पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए संत आए। मेरी माँ संतों की सेवा करने के लिए जाया करती थी, तो मेरी माँ मुझे भी संतों की सेवा में ले जाती। मैं 5 वर्ष का एक बालक था और संतों के सत्संग में जाकर के मैं बैठता था, लेकिन मुझे समझ में कोई बात नहीं आती, फिर भी मेरी मां मुझे उंगली पकड़ करके सत्संग में ले जाती थी। कभी कभी बच्चे कथा में सत्संग में आनाकानी करते हैं जाने के लिए, लेकिन माता पिता का ये फर्ज है, ये दायित्व है। कि समय समय पर सत्संग में जरूर बच्चों को लेकर के जाओ। नारद जी ने कहा कि मैंने अपनी मां के द्वारा सत्संग प्राप्त किया, लेकिन जब सत्संग पूर्ण हुआ और संत अपने गंतव्य स्थान की ओर जब जाने लगे तो बहुत बड़ा भंडारा हुआ। संत उस भंडार में प्रसाद पा रहे थे। मेरी मां संतों के उस भंडार गृह में जाकर के झूठे बर्तन मांज रही थी। मैं मां के पास बैठा हुआ था, एक अबोध बालक। एक संत ने आकर के मुझे कहा कि बेटा देखो तुम्हारी मां कितनी संत सेवी है, जाओ तुम भी कुछ सेवा करो ना। तो मैंने उस संत से कहा कि महाराज आप मुझे बताइए मैं क्या सेवा करूं। उस संत ने विचार किया कि अभी ये बालक है, इसे कोई बड़ी सेवा नहीं दूंगा। तो कहा कि बेटा देखो जब संत ब्राह्मण वैष्णव लोग भोजन करके उठ जाएं तो उनकी झूठी पत्तल उठाओ। मैं आज्ञा से झूठी पत्तल लेकर के आश्रम से बाहर जाकर के फेंक देता था। मध्यान्ह हो गई, किसी ने मेरे से ये नहीं कहा कि बेटा तुमको भूख लगी होगी, थोड़ा सा प्रसाद ले लो। अब मुझे बहुत भूख लगी थी, बालक ही तो था। जब मुझे नहीं रहा गया तो मैंने एक संत की झूठी पत्तल से झूठन उठा ली और उस झूठन को उठा करके मैंने अपने मुख में रख लिया कि महाप्रसादे गोविंदे नामनी ब्रह्मणि वैष्णवे अल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। मैंने उस महाप्रसाद को जब ग्रहण किया तो तदपास्त किल विषा, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, चित्त शुद्धि हुई। संतों ने जब मुझे देखा तो कहा कि यह संस्कारी बालक है, इसे भगवान की ओर भेजना चाहिए, ये परमात्मा से मिलने का अधिकारी है। क्योंकि संत की अपनी दृष्टि होती, जैसे जौहरी की दृष्टि में साधारण व्यक्ति की दृष्टि में एक हीरा पत्थर हो सकता है, लेकिन जौहरी की दृष्टि में वो हीरा है, पहचान है। इसी प्रकार से महापुरुष संत पुरुष गुरुजन जानते हैं कि ये जीव उसके क्रिया उसके संस्कार देख करके बता सकते हैं कि ये जीव परमात्मा का दर्शन का अधिकारी है, इसे परमात्मा मिलेगा, बता सकते हैं। उसकी क्रिया से, उसके हाव भाव से, उसके चलने से, उठने से, वार्तालाप से, उसके भाव से, उसकी निष्ठा से ये मालूम हो जाता है। तो संतों ने, नारद जी ने कहा मुझे एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये मंत्र मिला, इसे कहते हैं वासुदेव गायत्री। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये मंत्र मुझे मेरे गुरुदेव ने प्रदान किया और मैंने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके अपनी मां के साथ जब घर लौटा, लेकिन इतना चाव, इतना उत्साह, इतना मन में लगन कि एकांत में बैठ कर के मैं उस मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ ने देखा, माँ बोली कि जब से मैं संतों के पास से लौटी हूँ तब से ये मेरा पुत्र एकांत में बैठ जाता है और ये गुनगुनाता है, क्या हो गया इसे? तो जब जब मैं मंत्र का जाप करने के लिए बैठता तो नारद जी कहते हैं भागवत में कि मेरी मां मुझे भगवान का भजन नहीं करने देती थी, क्योंकि मां का इकलौता बेटा, मां के मन का यह था कि यदि ये बाबा जी बन गया तो मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा। माँ को ये स्वार्थ था, लेकिन वो जीव तो परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है, उस पर गुरु कृपा हो चुकी है। एक दिन संधि काल के समय नारद जी बोले कि मेरी माँ गऊ का दूध निकालने के लिए जब गौशाला में गई और जब बाहर निकली तो मां का पैर एक सर्प पर पड़ा, डस लिया, मृत्यु हो गई। मां का अंतिम संस्कार करके मेरा मुख जिधर उठा उधर में चल दिया। चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के मैं बैठा, क्योंकि पीपल के वृक्ष साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा और अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया कि ओम नमो भगवते वासुदेवा। एक निष्ठा से, जैसे जैसे दृढ़ता से मंत्र जाप जब हुआ तो सनेही सनेही मेरे हृदय में मुझे गोविंद का दर्शन होने लगा और आकाशवाणी के द्वारा मुझे भगवान मेरे हृदय आकाश में बोले कि हंतास्मन जनमनि भवान मामां दृष्टुमिहार्हति अभिपक्कु कषायाण दुर्दर्शोहं कुयोगिनः। बेटा, तुम निष्ठा से मेरा ध्यान जप सुमिरन कर रहे हो, लेकिन इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी राग द्वेष है। लेकिन मेरा दर्शन होगा जरूर, अनेक जन्म संसिद्धि। गीता में भगवान ने अर्जुन को यह बात कही है स्पष्ट। भगवान कहते हैं कि यदि एक जन्म में मेरा दर्शन न हो तो भजन करना छोड़ना नहीं, मैं मिलूंगा, मेरा दर्शन होगा। तो नारद जी ने कहा कि मैंने भगवान का दृढ़ निश्चय लेकर, दृढ़ मंत्र का आश्रय लेकर के जाप किया। एक दिन आकाश से बिजली गिरी और काल की प्रतीक्षा में मैं था। काल के प्रभाव से ये देह मेरी छूट गई और दूसरा जन्म मेरा ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ इस सृष्टि के अंदर। आपके सामने वेदव्यास में खड़ा हूं और मेरे हाथ में वीणा आप देख रहे हो, जिसका नाम है देवदत्त। नर जी की वीणा का नाम है देवदत्त। ये देवदत्त नाम की वीणा मुझे परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई है और इस देवदत्त नाम की वीणा में केवल मैं प्रभु का ही नाम गाता हूं, केवल मैं गोविंद का ही नाम गाता हूं। कि देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। इस वीणा को लेकर मैं निरंतर प्रभु के नाम का आश्रय लेता हूं। ऐसा कहकर के नारद जी ने चार श्लोक वेदव्यास को बताकर के चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया, जिसमें ब्रह्म तत्व, माया तत्व, जग तत्व और आत्म तत्व का निरूपण किया। वही भागवत का विस्तार वेदव्यास जी के द्वारा किया गया। चार श्लोक प्राप्त करके नारद जी से 18,000 श्लोक बनाए और वही भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। ये भागवत किसी पुत्र को नहीं दी जाती, भागवत पात्र को मिलती है। जो पात्र होता है वही पात्र में ये भागवत टिकेगी। पुत्र को कोई दे, जैसे व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दी, ठीक है, लेकिन सुखदेव जी केवल पुत्र नहीं थे, भागवत के पात्र थे। तो पात्र को श्रीमद् भागवत प्राप्त होती है और भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ही सबसे पहले पांडवों का चरित्र भागवत में आया है। और जिस पांडवों के चरित्र में यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेशु यहां से कथा का प्रारंभ भागवत में हो रहा है, क्योंकि आप लोग अभी विश्राम के समय बड़ी सुंदर यहां झांकी का भी दर्शन करोगे, लेकिन थोड़ा पांडवों का बड़ा सुंदर यह वृत्तांत है, मैं संक्षिप्त में ही उसका वर्णन करूं। आप दिव्य झांकी भी यहां एक, क्योंकि आज से इस महायज्ञ में आप लोग झांकी का भी दर्शन करेंगे, क्योंकि ये महायज्ञ मैंने बताया आपको कथा के प्रारंभ में कि ये एक यज्ञ ही नहीं है, ये एक महायज्ञ है। और इस महायज्ञ के जो यजमान हैं हमारे साक्षात श्याम बाबा हैं, और जहां पर श्याम बाबा स्वयं विराजमान हों तो वहां पर वो यज्ञ यज्ञ नहीं होता, वो एक महायज्ञ का रूप धारण कर लेता है, वो महायज्ञ रूप में परिणत हो जाता है। कहने का अभिप्राय, एक कोई व्यक्ति जब कथा कराता है, यजमान बनकर के बैठता है, तब एक विशाल यज्ञ हो जाता है, लेकिन जिस यज्ञ में स्वयं बाबा बैठे, हाँ, स्वयं कृष्ण स्वरूप, जो प्रभु ने जिनको अपना स्वरूप दिया हो, जिनको वो स्वयं कृष्ण प्रतिमूर्ति ही श्याम बाबा जिस महायज्ञ में आकर के विराजमान हो, तो वो यज्ञ फिर यज्ञ नहीं रहता है। ये हमारा यज्ञ तो एक महायज्ञ का रूप ले चुका है, ये महायज्ञ की ओर जा रहा है। और इस महायज्ञ में आज से ही झांकियों का भी आप लोग दर्शन करेंगे, लेकिन पांडवों का मैं संक्षिप्त में आपको, क्योंकि भागवत में पांडवों से चरित्र का प्रारंभ हुआ है और श्याम बाबा की कथा भी महाभारत से जुड़ी हुई कथा ही है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मन में आप लोगों की भी जिज्ञासा होगी और संस्कार चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग इस कथा को घर बैठे भी श्रवण कर रहे हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा आपको कि श्याम बाबा की महिमा क्या है और महाभारत से कैसे जुड़ी ये कथा है, कृष्ण रूप में कृष्ण प्रतिमूर्ति क्यों व्यास गद्दी से मैंने बाबा को कहा, यह भी मैं आपको आगे कथा में इसका भी संकेत करूंगा कि उनकी क्या महिमा है। भागवत में यहां से कथा का प्रारंभ हुआ है, जिस समय महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया था और भीम के द्वारा दुर्योधन को गदा युद्ध के समय जंघाओं को तोड़ दिया, अंतिम श्वास ले रहे थे, तो अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, ये रात्रि में पांडवों के शिविर में गए और पांडवों के शिविर में जाकर के इन्होंने पांच पांडव समझकर उनके पांच पुत्रों का सिर काट दिया और लेकर के दुर्योधन के पास गए और जाकर के दुर्योधन से बोले कि महाराज, यदि आप अपने देह का त्याग कर रहे हैं तो एक खुशखबरी सुनिए, मैंने आपके शत्रु पांडवों को मार डाला है। इतना जब सुना तो देह से प्राण निकल रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने, रात्रि थी उस समय, तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीम का सिर दिखा, क्योंकि भीम के प्रति बड़ा आक्रोश था दुर्योधन को। तो भीम का तू सिर दिखा, तो भीम के पुत्र का सिर लेकर ये पांच पांडवों के अलग पांच पुत्र भी हुए, लेकिन एक भीम की परंपरा, भीम के पुत्र घटोत्कच और कामकनकटा नाम की पत्नी से महाराज वरवरीक उत्पन्न हुए थे। ये वरवरीक महाराज, ये वरवरीक नाम क्यों पड़ा? ये श्याम बाबा का नाम ही वरवरीक है, जिनके जन्म के समय जैसे शेर के बाल होते हैं इस प्रकार से उनके बाल थे, तो नाम रखा गया था वरवरीक। एक भीम जी की ये परंपरा भी है, इस पर मैं आगे संकेत करूंगा, बहुत दिव्य प्रसंग है ये भी। लेकिन एक बात और कहूं यही, और ये हम सबको इस प्रसंग से शिक्षा भी लेना चाहिए कि बालकपन से ही वरवरीक महाराज जो श्याम बाबा हैं, बल पौरुष और महादानी थे। यानी दानियों की सूची में, कृष्ण भक्तों की सूची में यदि कोई नाम सबसे ऊपर है तो मेरे श्याम बाबा का नाम उससे बड़ा और किसी का नाम नहीं हो सकता है। जब जब संसार में दानियों का नाम लिया जाएगा तो बाबा से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता है, जिन्होंने स्वयं प्रभु को अपना शीश का दान कर दिया था। तो भीम जी की एक ये परंपरा है। लेकिन पांच पुत्र महाभारत में जो बताए हैं, जब भीम के पुत्र का सिर कटा हुआ जब दिया था दुर्योधन के हाथ में, तो दुर्योधन ने उसे दोनों हाथों से लेकर के जब पहचान करने के लिए कि भीम का ही सिर है, जब दोनों हाथों से उसे दबाया तो आंखों से दुर्योधन के अश्रुपात हुए, और दुर्योधन ने रात्रि में ही अश्वत्थामा को कहा कि अश्वत्थामा, ये तूने पांच पांडव नहीं मारे, ये तूने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया है। ऐसा कहकर के तड़फते हुए दुर्योधन ने तो अपनी देह को त्याग दिया। लेकिन प्रातःकाल जब द्रौपदी शिविर में अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई और पांचों पुत्रों को मृत अवस्था में जब देखा, रोई, बिलखी, छटपटाई, अर्जुन आए और अर्जुन ने आकर के जब देखा तो माता शिशोनाम निधनम सुतानाम आकर के सांत्वना प्रदान की, और सांत्वना प्रदान करके कहा कि जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं भी उसे प्राण दंड दूंगा, और तू उसके सिर पर अपना पैर रखकर के स्नान करना। ऐसा कहकर के अर्जुन ने अपने रथ को तैयार किया और रथ को तैयार करके अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे भागे। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को आते हुए देखा तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन भगवान की शरणागति हुए और भगवान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र है, तो भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, अंत में रथ को क्षत विक्षित करके पटक कर पकड़ लिया अश्वत्थामा को, और पाश में रस्सी से बांध करके द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा किया और कहा कि द्रौपदी, ये तेरे पांच पुत्रों का हत्यारा है, बोल मैं इसे क्या दंड दूं। मुच्यताम उच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, ये आपके गुरु का पुत्र है। लेकिन भीम ने कहा, नहीं अर्जुन, इसका तुम वध कर दो, ये पांच पुत्रों का हत्यारा है। अब अर्जुन ने देखा कि भीम कहते मार डालो, द्रौपदी कहती है कि इसे छोड़ दो, ये आपके गुरु का पुत्र है, आपके गुरु की जो पत्नी है कृपी, आपके गुरु माता को बड़ा कष्ट होगा, आप इसे छोड़ दो। तो भगवान की ओर देखा तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। अर्जुन, ब्रह्म बंधु का कभी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई आतताई व्यक्ति हो तो उसे दंडित भी अवश्य करना चाहिए। ये दोनों बातें मैंने शास्त्र में कही है। अर्जुन ने तुरंत म्यान से तलवार निकाल ली और मस्तक में जो मणि थी अश्वत्थामा के उसे निकाल करके अश्वत्थामा को धक्का देकर राज शिविर से बाहर किया। और पांडवों की रक्षा प्रभु ने कराई, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण कराई भगवान राजगद्दी पर युधिष्ठिर जी को बिठा कर के जब चले, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता और सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को कभी नहीं त्यागते किसी स्थिति में। उस अश्वत्थामा ने अर्जुन के द्वारा रक्षित होने पर फिर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा भगवान जब द्वारिका के लिए गमन कर रहे थे, भगवान के रथ के आगे आकर के खड़ी हुई और प्रार्थना की है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने कहा कि बेटी प्रार्थना क्यों कर रही है, क्या बात है? बोले प्रभु, मामे गर्भो निपात्यताम, आप का ही भक्त बैठा है, भगवान को मालूम है कि उत्तरा के गर्भ में मेरा परम भक्त बैठा है। तो भगवान गए उत्तरा के गर्भ में और क्योंकि महाराज परीक्षित हैं और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया, रक्षा की उत्तरा की। लेकिन भगवान का रथ जब आगे बढ़ा तो भगवान के रथ के आगे कुंती खड़ी हो गई और कुंती ने भगवान की स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ने पूछा, बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना क्यों, क्या मेरे से कुछ लेने की इच्छा है? क्यों कहने, या क्या आपसे लोग जब कुछ चाहते हैं तभी आपकी प्रार्थना करते हैं क्या? बोले बुआ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लोग तभी मुझे याद करते हैं जब मेरे से कुछ लेने की इच्छा होती है, तो मैं उनको भी देता हूं ना, तो तू मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले मांग लूं, देने में हाथ कहीं रुक ना जाए। बोले भुआ मांग तो सही। तो कुंती ने कहा कि विपदस्संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम अपुनर्भव दर्शन गोविंद, मुझे तू दुख दे दे। भगवान बोले, बुआ दुख क्यों मांगा, कोई मांगता है भगवान से दुख? नहीं। लेकिन कुंती ने दुख क्यों मांगा? कुंती इसलिए भगवान से दुख की याचना कर रही है कि ये कहना चाहती है कुंती कि वो सुख मुझे नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना, जिस सुख को पाकर के हम अपने आराध्य को भूल जाएं, वो सुख कभी मत मांगना। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए कुंती भगवान को कहती है कि वो मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख पाकर के व्यक्ति को इस बात का अभिमान हो जाता है कि अब मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं बस। अरे कभी कभी तो धन का इतना नशा हो जाता है व्यक्ति को, जिनकी कृपा से धन मिला है, कि स्वयं अपने आप को ही व्यक्ति भगवान समझने लेता है। ईश्वर की संज्ञा कि बस अब मैं धन से सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं, परमात्मा परमात्मा है। ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने का मन में संकल्प, ये अभिमान व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कुंती ने यह कहा कि मुझे वो दुख मंजूर है हे गोविंद, जिस दुख में आपकी याद तो बनी रहे। वो भले ही आप मुझे दुख दे दो, वो सुख मुझे आपसे नहीं चाहिए, जिस सुख को पाकर के मैं आपको भूल जाऊं। तो कुंती ने भगवान से ये मांगा। भगवान कुंती को दर्शन देकर कुंती की प्रार्थना पर वहीं रुके, लेकिन प्रातःकाल होने पर भगवान अपने ध्यान अवस्था में बैठे थे तो अर्जुन आए, और अर्जुन ने देखा कि भगवान आंखें बंद किए बैठे हैं, तो पूछा, गोविंद आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहा कि मैं आज बहुत दिन से जो मुझे याद कर रहे हैं उस भक्त को मैं याद कर रहा हूं। बोले, प्रभु कौन? क्योंकि मैंने आपको कभी ध्यान अवस्था में नहीं देखा। तो भगवान ने कहा कि मैंने भीष्म पितामह से कहा था कि जब आप अपने देह का त्याग करेंगे तो मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो मुझे भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए जाना है। अर्जुन तुम अपना रथ लेकर के आओ। अर्जुन तुरंत रथ लेकर के आए और रथ लाकर के खड़ा किया और भगवान से कहा, प्रभु कहिए कहां चलना है, लेकिन हम आपसे पूछने के हकदार तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमको भी ले चले। भगवान ने कहा कि आप सब चले। तो पांचों पांडव हैं, धौम्य हैं, आचार्य कृपाचार्य हैं, सबको लेकर के आज कुरुक्षेत्र की यात्रा पर कृष्ण चले। जब कुरुक्षेत्र में भगवान पहुंचे हैं, जहां पर भीष्म पितामह सरशैया पर पड़े थे, जिनका सारा शरीर बाणों से बिंधा पड़ा है, ऐसा कोई अंग नहीं है जहां तीर न लगा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भीष्म पितामह ने परमात्मा को नहीं भूला। क्योंकि कभी कभी देखो, भगवान दो बार हंसते हैं, प्रेम से कहिए श्री राधे, परमात्मा को दो बार बहुत हंसी आती है इस जीव पर। कब? एक तो तब जब दो भाई आपस में झगड़ा करते हैं, डोर लेकर के नापा तोली होती है, मेरा और ये तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा जब होता है ना, तो परमात्मा हंसता है। क्योंकि भागवत के अंदर ये बात आई है कि इस पृथ्वी के लिए कितने राजा महाराजों ने झगड़ा किया, और पृथ्वी कहती है भागवत में कि वो काल के गाल में समा गए, उनका नाम निशान भी मिट गया, लेकिन जिनके लिए झगड़ा हुआ, जिस पृथ्वी के लिए, वो वहीं के वहीं हैं और वो चले गए। तो जब दो भाई झगड़ा करते हैं और नापातोली होती है, ये तेरा हिस्सा का, ये मेरा, बस तब परमात्मा हंसता है। और दूसरा, भगवान को तब हंसी आती है जब ये डॉक्टर ये कहता है मरीज को कि मैं तुम्हारे को ठीक कर दूंगा, तब भगवान हंसते हैं। नहीं नहीं, यदि डॉक्टर ही ठीक कर दे तो फिर डॉक्टर के घर से कभी अंतिम शव यात्रा ही ना निकले। हाँ, डॉक्टर ही ठीक कर दे तो फिर उसके घर से कभी अंतिम शव यात्रा ही ना निकले। वो भी कहता है कि भगवान पर भरोसा रखो। तो जब उसको भी यही कहना है तो पहले उस पर भरोसा क्यों नहीं कर लेते हो भैया? उसके भरोसे पर क्यों नहीं रहते हो? उसका भरोसा रखो। आज भीष्म पितामह को जानते हैं कि मैं ठीक होने वाला नहीं हूं। भीष्म पितामह लेटे लेटे प्रभु के नाम का ही स्मरण कर रहे थे, एक क्षण को भी परमात्मा श्री कृष्ण को नहीं भूले। निरंतर कृष्ण का स्मरण भीष्म पितामह ने किया तो भगवान आज दर्शन देने के लिए आए थे, पांचों पांडवों से मिले, आशीर्वाद दिया, लेकिन आंखें कृष्ण को खोज रही थी। भगवान भीष्म पितामह की प्रार्थना पर आए हैं दर्शन देने के लिए, आज खड़े हुए तो कहां पर? बोले भीष्म पितामह के सिराने। तो कहा प्रभु आप आए हो अंतिम समय दर्शन देने के लिए, लेकिन पीठ पीछे क्यों खड़े हो? तो भगवान ने कहा कि बाबा क्या करूं, मुझे पर्दा करने की बहुत आदत है। हमारे ठाकुर को पर्दा करने की, बार बार वृंदावन कभी आप जाएं तो बांके बिहार जी की झांकी खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बहुत पर्दा करने की आदत है ठाकुर जी को, ये देखने के लिए कि पर्दा बंद होने पर इसका ध्यान कहाँ है, कहीं भटक तो नहीं गया, आंखें कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई, इसलिए ठाकुर बार बार पर्दा लगा देते हैं ये देखने के लिए कि इसकी दृष्टि कहाँ है। और फिर पर्दे के पीछे से मेरे ठाकुर झांक करके देखते हैं अपने भक्त को, किसका ध्यान कहाँ है, इसलिए पर्दा भक्तों का भाव है। तो भीष्म पितामह ने जब प्रार्थना की कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम, प्रभु आप मेरे सन्मुख आकर के खड़े हों, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, तो भीष्म पितामह की प्रार्थना पर भगवान सन्मुख आकर के खड़े हुए। और भीष्म पितामह ने प्रभु की उस दिव्य झांकी का जब दर्शन किया तो 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, क्योंकि उस दिन एकादशी का दिन था। अब 10 तारीख को एकादशी आ रही है ना, विशेष दिन है ना बाबा का, आमल एकादशी है, ये आमल फागुन शुक्ला आमल एकादशी कहलाती, बहुत बड़ी पवित्र एकादशी है। तो भीष्म पितामह जिस दिन भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, एकादशी का ही दिन था, और 11 श्लोकों में भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने बपुरल कुलावृतान नाबजम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। प्रथम श्लोक में भीष्म पितामह ने अपने मन और बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पण की भावना से भाव रखा। द्वितीय श्लोक में भगवान के स्वरूप का सुंदर चिंतन किया और आगे श्लोकों में भगवान का स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा कि अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए, अपने भक्त के संकल्प को पूर्ण कराने के लिए प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा, ये प्रभु को प्रभु का वचन याद कराया। लेकिन अंतिम श्लोकों में बहुत सुंदर बात भीष्म पितामह ने कही कि प्रभु आपका जो अवतार होता है वो अनेक कारण है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वास्तव में आप अवतार क्यों लेते हो। ये भीष्म पितामह का अपना भाव है। भीष्म पितामह ने कहा कि कोई कहता है कि किस कारण से अवतार हुआ, कोई कहता है किस कारण से अवतार हुआ, लेकिन मेरी समझ में एक बात है कि आप अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेते हो और अवतार लेकर के अद्भुत लीला करते हो और उन लीलाओं का दर्शन करके बड़ी सरलता से उन लीलाओं का गान करते हुए भक्त इस संसार से पार हो जाता है, वो आपके नाम को गा करके। आइए उस दिव्य झांकी का आप भी, उस युगल छवि का ध्यान करते हुए अपनी वाणी में वो अमृत घोल लो कृष्ण नाम का, दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से आइए।
हो, ओ अपनी वाणी में अमृत हो, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधा जी ब्रश भानु दुलारी, राधा जी ब्रश भानु दुलारी, राधा जी बरसाने वारी, राधा जी ब्रश भानु दुलारी, राधा जी ब्रश भानु दुलारी, राधा जी ब्रश भानु दुलारी, ये अक्षर अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत हो, ओ अपनी वाणी हरिबो राधा जी महारास नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर के नयनन में, अंतर के पट को रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत हो, ओ अपनी वाणी में अमृत हो, ओ रसना राधे राधे बोल। बनवार बिन राधा नहीं सजे मुरारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी जहो बिन राधा इनके चरण पकड़ ले भटक न दर दर डो
केवल एक मिनट के लिए सभी लोग दोनों हाथ उठा करके सरकार की जय खाटू नरेश की जय जय जय।